समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे में। प्रोग्राम के आज के अंक में भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की सैर पर, आपको देंगे मौसम का हाल और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। कार्यक्रम के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार सरफिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क।
रेनु, हम अपने श्रोताओं को हर रोज इस कार्यक्रम में बताते हैं कि आज जिस दिन में हमने कदम रखा है वो दिन खास क्यों है।
जी,
तो रेनु, मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारी भारतीय वायुसेना अपना 52वां स्थापना दिवस मना रही है। हर साल 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास और देश की सुरक्षा में इसके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी।
जी, एंड टॉकिंग अबाउट ऑफिशियली एस्टैब्लिशिंग ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932 एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विच ऑनर्ड इंडियाज एविएशन सर्विस during World War II with the prefix Royal. After India gained independence from United Kingdom in 1947, the name Royal Indian Force was kept and served in the name of the Dominion of India. With the transition to a republic in 1950, the prefix Royal was removed. And there is more, Sir Firozi. Since 1950, the Indian Air Force has been involved in 4 wars with neighboring Pakistan. Other major operations undertaken by the IAF include Operation Vijay, Operation Meghdoot, Operation Cactus and Operation Pumalai. The IAF's mission expands beyond engagement with hostile forces, with the IAF participating in United Nations peacekeeping missions. And the President of India holds the rank of Supreme Commander of the Indian Air Force.
Renu, आपने बताया हमारे श्रोताओं को किस तरह किस किन किन जंग में किन युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपना योगदान दिया।
जी,
वहीं कई तरह की आपदाओं में राहत बचाव अभियान में भी हमारी भारतीय वायुसेना हमेशा आगे रही है। चाहे वो मेडिकल एड देना हो या खाना पहुंचाना हो या वहां किसी बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे लोगों को निकालना हो, हरदम वायुसेना ने अपना योगदान दिया। और इस साल के वायुसेना दिवस की थीम भी कुछ इसी तरह की है। यह है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, जो दिखाता है कि हमारी वायुसेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। और रेनू, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर हर साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस वायुसेना दिवस पर भी इसी तरह के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। इनमें से एक है वायुवीर विजेता कार रैली, जो आज से लद्दाख के थोइस से निकाली जाएगी। ये रैली 7000 किलोमीटर लंबी है और इसका समापन 19 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचने के साथ होगा। माफ कीजिए, इसका रैली का समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचने के साथ होगा।
जी बिल्कुल, सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइन सर फिरोजी।
जी रेनू, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोपहर तक परिणाम मिलने लगेंगे। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर रुझान और परिणाम देने की व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। 10 मतगणना केंद्र कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में बनाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर 28 मतगणना केंद्र हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में पिछले महीने की 18 और 25 तथा इस महीने की 1 तारीख को मतदान हुआ था। वहीं हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 जिलों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था।
Union Health Minister J.P. Nadda yesterday announced several key initiatives aimed at enhancing nutrition support for tuberculosis patients and their household contacts. Underscoring India's resolute commitment to end TB, Mr. Nadda informed that the monthly nutrition support under Nikshay Poshan Yojana has been doubled from the existing 500 rupees to 1,000 rupees for all TB patients during the period of treatment. He said that the government has also decided to introduce energy-dense nutrition supplementation for all patients with BMI less than 18.5. The Central Board of Direct Taxes has informed and has formed an internal committee to oversee a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The Ministry of Finance said that the goal of this committee is to make the Act concise, clear and easy to understand, which will reduce disputes, litigation and provide greater tax certainty to taxpayers. The Ministry also invited suggestions on the Income Tax e-filing portal. The suggestions are invited under four categories that are simplification of language, litigation reduction, compliance reduction and redundant or obsolete provisions.
और रेनु जो अगली खबर है वो हमारे जो श्रोता भारतीय सिनेमा में रुचि रखते हैं उनके लिए दिलचस्प होने वाली है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं नित्या मेनन को तमिल फिल्म तिरुचित्रांबलम के लिए और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त होगा।
And the next news that I have, Sir Firozi, is for all music lovers.
Okay.
In Madhya Pradesh, Ustad Alauddin Khan Festival will start today in Maihar. This is the golden jubilee year of this music festival. During the three-day event, many well-known personalities of the country will perform at the festival. We have more from our correspondent.
The three-day Ustad Alauddin Khan Festival is being organized jointly by the Madhya Pradesh Cultural Department, Ustad Alauddin Khan Music and Art Academy and Maihar District Administration till October 10th. Ustad Alauddin Khan was famous in the music world not only in the country but also around the world. He made tireless efforts to promote the music tradition in Madhya Pradesh and connect the new generation with music. Two exhibitions are also being organized on this occasion. In the first exhibition named Devi, there will be a collection of miniature paintings based on 108 names of goddess. While under the title Tantu, an exhibition focusing on string instruments is being organized. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
और श्रोताओं अब आपको दे दें खेल खबरों की खुराक। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। कल शारजा में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 124 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने 7 विकेट और 4 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई से। तो रेनू, चेन्नई से क्या खबर है आपके पास?
यस, इट इज ऑन द एयरफोर्स डे दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, सर फिरोजी
जी।
द इंडियन एयरफोर्स विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स 92nd एनिवर्सरी एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन तंबरम टुडे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ग्रैंड इवेंट इज हैपनिंग एट चेन्नई। द डे विल बी मार्क्ड विद द फ्लाई पास्ट एंड अ परेड। Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, will be the chief guest for the day. The Air Force Station Tambaram is involved in training pilots as qualified flying instructors and Mechanical Training Institute for Airmen. It was started as Royal Air Force Station in the Madras Presidency during the British regime. And what do we have from Delhi from your end, Sir Firozi?
जी रेनू, राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर के लगातार बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने मंडियों से सीधे खरीदकर 65 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर की बिक्री करने की शुरुआत की है। इस तरह से उपभोक्ताओं को लाभ मिलने के साथ टमाटर के बढ़ते दाम को काबू करने में मदद मिलेगी। और रेनू, बेंगलुरु से क्या जानकारी है?
द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज डिफर्ड अ डिसीजन ऑन 28 एप्लीकेशन Commission seeking mining rights within 10-kilometer radius of Kapataguda Hillock in Gadak in North Karnataka. A meeting held under the chairmanship of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru yesterday has kept the 28 mining applications in abeyance. Briefing the media persons after the meeting, the Forest Minister Ishwar Khandre informed that the Chief Minister has decided not only to defer the decision on 28 mining applications but has also asked the Forest Department to issue notices to illegal mines operating in the 1-kilometer radius of Kapataguda Wildlife Sanctuary. The Chief Minister has directed the officials to inspect the area around Kapataguda Wildlife Sanctuary and submit a status report.
और अब रेनू बात कर रहे हैं मुंबई की, तो जो खबर मेरे पास है वो मुंबई वासियों के लिए बहुत काम की होने वाली है
जी।
मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो के पहले चरण के तहत कल से आरे कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। आरे और बीकेसी के बीच 12.69 किलोमीटर का ये खंड 33.5 किलोमीटर की कोलाबा सीब्स आरे मेट्रो लाइन तीन का हिस्सा है। इस मेट्रो की नियमित सेवाएं सप्ताह के बाकी दिनों में सुबह 6:30 से रात 10:30 तक और रविवार को सुबह 8:30 से रात 10:30 तक उपलब्ध होंगी। इसके लिए टिकट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मुंबई मेट्रो 3 मोबाइल ऐप और टिकट वेंडिंग मशीनों का उपयोग करके खरीदे जा सकते हैं। और रेनू, हैदराबाद से भी आपके पास कोई खबर होगी?
बिल्कुल है सर फिरोजी। Telangana Chief Minister A. Revant Reddy has urged the centre to release over 11,713 crore rupees for restoration and repairs of damaged infrastructure due to recent heavy rains and floods in the state. He also urged the centre to include Hyderabad's comprehensive sewerage master plan under Amrut 2.0. He further requested the centre to undertake the Metro Rail Phase 2 project on a 50-50 joint venture basis between the centre and state. Mr. Reddy called on Union Home Minister Amit Shah in Delhi yesterday and informed that 37 people had lost their lives. More than 1 lakh cattle and other domestic animals died during heavy rains. Crops have been damaged in over 4,16,000 acres besides huge damage to infrastructure. The Chief Minister also called on Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal Khattar and requested for inclusion of Comprehensive Sewerage Master Plan or CSMP of Hyderabad under Amrut 2.0. And I think the last news that now we are going to have is from Kolkata, Sir Firozi.
जी बिल्कुल। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुलसचिव डॉ. देवाशीष दास ने विशेष डाक टिकट प्रकाशित किया। कुलपति डॉ. संता दत्ता ने पत्रकारिता विभाग की कक्षा में एक पट्टिका लगाई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और अन्य लोग मौजूद रहे।
लोक निर्णय।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम
8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से।
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताज़ा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए
लोक निर्णय।
और अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में दिन में आसमान साफ रहेगा पर रात में बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बात करें कोलकाता की, तो यहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और रेनू, आपके पास मौसम की क्या जानकारी है?
आई हैव ऑल थ्री मेट्रोज विद मी सर फिरोजी, बिगनिंग विद चेन्नई। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और रेनु अब समय है कि अपने श्रोताओं को बताया जाए कि आज यानी 8 अक्टूबर का दिन क्यों खास है और आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी।
जी बिल्कुल। सो टुडे ऑन 8th ऑफ अक्टूबर इन 1919 महात्मा गांधी स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ यंग इंडिया।
आज ही के दिन 1919 में पहली बार ट्रांसकॉन्टिनेंटल एयर रेस शुरू हुई थी। इसमें सैन फ्रांसिस्को से 15 और न्यूयॉर्क से 48 यानी कुल मिलाकर 63 एयरप्लेन शामिल हुए थे।
In 1921, on this day, the Indian nationalists call a general strike on Prince of Wales' arrival in Bombay. And in 1932, on this day, that is 8th of October, the Indian Air Force was officially established, being the date of its formal constitution as India's first Air Force.
1952 में आज ही के दिन दुनिया का पहला इंटरनल पेसमेकर इम्प्लांट हुआ। स्वीडन में आर्ने लॉसन को 8 अक्टूबर 1952 को दुनिया का पहला इंटरनल पेसमेकर लगाया गया। 1973 में आज ही के दिन ब्रिटेन का पहला स्वतंत्र रेडियो स्टेशन LBC शुरू हुआ। 1996 में ओटावा में हुए सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए।
In 1993, on 8th of October, the squadron did itself proud by flying the big boy formation with one IL-76 in lead and two AN-32 of the squadron in formation on the occasion of the Air Force Day. And in 1998, on 8th of October, 16 policemen are killed when their vehicle is blown up by PWG Naxalites on the Basagura Jagar-Gonda Road in Madhya Pradesh's Bastar Division. And there is another year that I have, which is 2000. On this day in the year 2000, Anoop Sridhar and Tirupati Murungude claimed the boys and girls title in the Sonora All India Junior Ranking Tournament in Kozhikode.
और आज ही के दिन 2004 में भारतीय गेहूं पर मॉनसेंटो का पेटेंट रद्द हुआ।
जी।
और श्रोताओं अब हम याद करेंगे उन हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या इस दुनिया से विदा हुई।
And today we are paying tributes to Dhanpat Rai Srivastav, better known as Munshi Premchand Sir Firozi, जिन्होंने अपना पेन नेम प्रेमचंद रखा था, who was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature. Premchand was a pioneer of Hindi and Urdu social fiction. He was one of the first authors to write about caste hierarchies and the plights of women and labourers prevalent in the society of the late 1880s. He is one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent and is regarded as one of the foremost Hindi writers of the early 20th century. So, any works that we are going to talk about Premchand ji ke bare mein yahan pe?
Ji, bilkul Renu. Unke kaam se pehle baat karenge unki likhne ki shaili mein.
Ji.
To unka sahitya itna vishal aur vyapak hai ki isme ek pura yug samaya hua hai.
Bilkul.
Inki kahani mein kamzoron par atyachar ki jhalak milti hai. और रेनू अपनी कहानियों के बारे में खुद प्रेमचंद ये कहा करते थे कि मेरी कहानियां घटनाओं से प्रेरित होती हैं, लेकिन कोई घटना तब तक कहानी नहीं बनती जब तक कि उससे कोई मनोवैज्ञानिक सत्य साबित ना हो।
बिल्कुल।
और रेनू उनकी एक कहानी जिसके बारे में हम सभी ने शायद सुना होगा, कफन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वो इस कथन को कहीं ना कहीं सच भी साबित करती है। इस कहानी के माध्यम से समाज के प्रति प्रेमचंद का विद्रोह भी दिखाई देता है। और रेनु इस कहानी की कुछ पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं से और आपसे साझा करना चाहूंगी।
बिल्कुल, we are all ears।
घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। और रेणु अगर इनके उपन्यासों और साहित्य की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनमें पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, कफन आदि शामिल हैं।
एंड आई विल ऑल्सो टॉक मोर अबाउट हिज वर्क्स विच इंक्लूड गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर एंड ईदगाह। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 5 शॉर्ट स्टोरीज इन 1907 इन अ बुक कॉल्ड सोजे वतन, meaning sorrow of the nation. And as you have already said, his work includes more than a dozen novels, around 300 short stories, several essays and translations of a number of foreign literary works into Hindi. Lekin sir Firozi, yahan pe main ek bahut hi jise kehte hai na baat batana chahti hu jo shayad mujhe abhi tak nahi pata thi aur shayad ho sakta hai aapko bhi na pata ho. So मिल मजदूर जो प्रेमचंद जी ने 1934 में लिखी थी, दिस इज द ओनली फिल्म रिटन बाय द एक्लेम्ड राइटर मुंशी प्रेमचंद इन विच ही ऑल्सो प्लेड अ केमियो। क्या आपको ये पता था?
नहीं, ये बात मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं भी, बहुत कम श्रोता ये जानते होंगे कि उन्होंने अभिनय भी किया है।
बिल्कुल, और अपनी ही स्टोरी में, लिखी हुई स्टोरी पे। एंड द फिल्म कोटेड कंट्रोवर्सी ओइंग टू इट्स स्टोरी ऑफ द प्रोडिकल सन ऑफ अ बेनोवोलेंट मिल वर्कर हु इनहेरिट्स द मिल एंड प्रोसीड्स टू ट्रीट इट्स वर्कर्स विद डिस्डेन। सो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पे हमने बात करी है।
और अब रेणु हम याद करेंगे केदारनाथ साहू को। ये भारत की प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। इनकी आज पुण्यतिथि है। ये सरायकेला शैली में छऊ नृत्य के कलाकार थे। इन्होंने भारत के अलावा पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया में छऊ का नृत्य प्रदर्शन किया। इन्हें 1981 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
जी, today is the birthday of Matthew Paige Damon, who is an American actor, film producer and screenwriter. He was ranked among Forbes most bankable stars in 2007 and 2010, was one of the biggest grossing actors of all times. He has received various awards and nominations, including an Academy Award and 2 Golden Globe Awards, in addition to nominations for 3 British Academy Film Awards and 7 Primetime Emmy Awards. Damon made his acting debut in the film Mystic Pizza in 1988 before gaining prominence in 1997 when he and Ben Affleck wrote and starred in Good Will Hunting, which won them the Academy Award and Golden Globe for Best Screenplay. He established himself as a leading man by starring as Tom Ripley in The Talented Mr. Ripley in 1999, and also talking about Oppenheimer, jo ki last year 2023 mein aayi thi, the last of which is his highest grossing feature aside from awards he has garnered for his role as an actor and producer. Damon became the 2,300th person to receive a star on the Hollywood Walk of Fame on July 25th, 2007. And ek unka jo dialogue unhone bola tha yahan pe, you know, the way he reacted to the award, he stated, "A few times in my life I've had these experiences that are just kind of too big to process, and this looks like it's going to be one of those times."
और आज ही पुण्यतिथि है जयप्रकाश नारायण की। ये राजनीतिज्ञ और सिद्धांतवादी नेता थे। इन्होंने देश की सराहनीय सेवा की। इन्होंने मौलाना आजाद से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1932 में इन्हें एक साल की कैद हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में भारत की भागीदारी का विरोध करने के कारण 1939 में जयप्रकाश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। संघर्ष के इसी दौर में इनकी पत्नी भी गिरफ्तार कर ली गई और उन्हें भी 2 साल की सजा हुई, क्योंकि वो खुद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी और जनप्रिय नेता बनी। भारत निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों के लिए इन्हें भारत रत्न तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
And today is the birthday of Mona Singh, who's an actress who works in Hindi films and series, having first gained prominence in 2000s for playing the eponymous heroine in the soap opera series Jassi Jaisi Koi Nahi. She has since appeared in several other television and film roles. And Singh is the recipient of 2 Indian Television Academy Awards.
हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
सो सर फिरोजी, आप बता सकते हैं मैंने ये गाना किस एक्टर का सुनवाया है?
जी बिल्कुल, हम यहाँ याद कर रहे हैं राजकुमार जी।
ओह यस, सो राजकुमार बॉर्न कुलभूषण पंडित वॉज एन इंडियन एक्टर हु वर्कड इन हिंदी फिल्म्स एंड ही बिकेम पॉपुलर थ्रू हिज रस्टिक अपीयरेंस एंड द स्पेशल वे ही प्रेजेंटेड हिज डायलॉग्स। तो क्यों ना यहाँ पे पहले उनका एक डायलॉग सुन ले, फिर उनके ऊपर और बात करें।
बिल्कुल सुनते हैं।
भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी, हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आँखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए।
So that was one fantastic dialogue of Rajkumar's, and in a career that spanned over four decades, he went on to star in 70 films and is regarded as one of the most successful actors of Indian cinema. Rajkumar began his career with Rangili in 1952 and had followed it with Anmol Seher, Ab Seher, Ghamand, which most of which sank without a trace. So unke baare mein zyada pata nahi tha, lekin he got his breakthrough in 1957 with Mehboob Khan's epic drama Mother India. The film emerged an all-time blockbuster at the box office and also the most successful film of the 1950s. It went on to win several accolades and was also featured in the book 1001 Movies You Must See Before You Die. So, yahan pe is movie ka ek gana to banta hai.
Bilkul.
करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल।
और रेनू, हम आपने श्रोताओं को बताया कि किस तरह इन्होंने अभिनय में शुरुआत की, किस तरह से इनकी फिल्में सिनेमा में रिलीज हुई, पर शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राजकुमार पहले मुंबई के माहिम थाने में अधिकारी हुआ करते थे
जी।
पर फिर निर्माता बलदेव की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें अभिनय में वो इन्हें भारतीय सिनेमा में लाए। और बात करें राजकुमार को मिले पुरस्कारों की, तो दिल एक मंदिर और वक्त के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म उद्योग का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के भी इन्हें 1996 में प्राप्त हुआ। और हम अब अपने श्रोताओं को सुनाएंगे इनकी एक और फिल्म का गीत।
बिल्कुल।
तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार आखिरी पल।
एंड there are so many films that Rajkumar has worked in, but Kumar began the new decade with Kishore Sahu's romantic drama Dil Apna aur Preet Parai. The film proved to be a box office superhit with one of its song Ajeeb Daasta Hai Ye sung by Lata Mangeshkar becoming a chartbuster. So Sir Firozi, inki most of the films kahin na kahin unke gaane itne pyare the ki logon ko aaj tak wo sunne ka man karta hai. To yahan pe ek jo mujhe bahut priya hai ek gaana, kyun na hum wo bhi sun le, Neel Gagan Ke Tale.
Bilkul.
Yes.
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले।
आ आज जयंती है अपने समय के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब की। ये धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करते थे और इसके लिए इन्हें बड़ी ख्याति प्राप्त थी। इन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का पहला भारतीय अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। जब बदरुद्दीन तैयब की नियुक्ति मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई तो बाल गंगाधर तिलक पर सरकार द्वारा चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छोड़ने का साहसिक कार्य इन्होंने किया। और श्रोताओं, इसके साथ ही अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और रेणु कटारिया को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
यस, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।